सबदर अलंकार खेचरी मुद्रा दसवें द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लग इस रलंकार पहचाना। अब रलंकार शब्द कैसे होता है जाप या खेचरी मुद्रा क्या होती है? ऐसे जीव को तालु से लगाना और इसमें जीव तो हिल नहीं सकती तो क्या जाप करते हैं ऐसे। अब जीव को तालु के लगाकर रलंकार कह के देखना, इतना जोर लगेगा, बहुत जोर, और फिर उससे क्या होगा, अंदर एक इस तालु के ऊपर एक अमृत सरोवर है छोटा सा बना शरीर में ही, इस एक ब्रह्मांड का चित्र है ये, और उस जोर लगने से फिर थोड़ा सा एक वाल ही खिसक जाता है जो अमृत को रोके हुए, फिर वो थोड़ा थोड़ा अमृत नाड़ी के अंदर से, वो थोड़ा नकली अमृत है यहाँ का, और फिर वो इस शरीर में आकर के कुंडलनी शक्ति है नीचे नाभि पे, उसने नाभि को तीन चक्रों से जैसे सर्पनी होती है ऐसे घेरा बनाकर रोका हुआ, और उसका मुख सर्प जैसा है, वो उसमें आकर गिरता है अमृत, और वो सांस रोकने से मुरझा जाती है, और वो शरीर में वो अमृत फैल जाता है जिससे इसको भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है। इससे तो उस सच्चे नाम का जाप करने के लिए तैयार हो सकता है, बाकी इससे मुक्ति कुछ नहीं, इससे कुछ सिद्धियां आ जाती, कोई भी प्रयत्न प्रभु के पाने का चाहे वो किसी ढंग से करा, छोटी मोटी सिद्धियां आ जाती हैं इन मंत्रों से, लेकिन प्रभु नहीं पाया जा सकता। आगे पांचवा शब्द है शक्ति शब्द ध्यान उन्मनी मुद्रा बसे आकाश स्नेही झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखाए वो जाने जनक विदेही। शक्ति मंत्र है एक, शक्ति वो नाम अलग है, उसका सिरियम नाम है सिरियम, ये शक्ति का सिरियम नाम है, और इन्होंने क्या लिख दिया सतनाम रख दिया शक्ति शब्द की जगह पांचवा, इसलिए पांच नाम बना करके देने प्रारंभ कर दिए, ये काल तक के ही। अब इसमें शक्ति शब्द उस सिरियम जाप से ये उन्मनी मुद्रा राजा जनक को ये उपलब्धि हुई, उन्मनी मुद्रा में पहुंच गए, और फिर वहां कहां पहुंचे, केवल स्वर्ग तक, और फिर कलयुग में फिर जन्म हुआ जनक विदेही का, और वो राजा जनक ही गुरु नानक देव जी के रूप में उत्पन्न हुई, वही पुण्यात्मा। आगे कबीर साहब इसी शब्द में बता रहे हैं पांच शब्द पांच है मुद्रा सो निश्चय कर जाना, ये तो सही है, पांच ही नाम और पांच है मुद्रा, ये काया बीच ठिकाना, पांच शब्द पांच है मुद्रा सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुरातन नी अक्षर और उसकी खबर नहीं जाना, इन नामों से उस नी अक्षर परम अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म सतकबीर अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को नहीं पाया जा सकता। नौ नाथ चौरासी सिद्ध लग इस पांच शब्द में अटके, नौ नाथ चौरासी सिद्ध तक ये पांच शब्द में अटके, ये स्वयं भी शब्द जाहिर की स्थिति जब जाती है उस मंडल में ये ऐसे ही अपने आप भी रंग रंग हो रहा होता है, शब्द भी हो रहा होता है, और ऐसा भी जो तिनरंजन कहाँ पहुंचे जहाँ ब्रह्म लोक में एक महास्वर्ग में ये जाते हैं वहाँ अपने आप एक शब्द हो रहा है ज्योत निरंजन, तो ये फिर वहां पहुंच जाते हैं इस महास्वर्ग के अंदर और यहाँ उलझे रहते हैं। क्या बताया है कि नौ नाथ चौरासी सिद्धलग पांच शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर अंधे मुख लटके, फिर मेडिटेशन अपने आप बन जाता है, आनंद आने लग जाता है, जिसकी जो साधना कर रहा है उसका एक धुन अंदर आनी शुरू हो जाती है, कुछ अंदर दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं, उसके आधार पर ये अंदर आनंद लेते रहते हैं, और ये आनंद ये मेडिटेशन का आनंद ही इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है, यही काल का जाल है। पांच शब्द पांच है मुद्रा कहते नौ नाथ चौरासी सिद्धलग पांच शब्द में अटके, इन पांचों शब्दों में अड़े रहे यही फंसे रहे, और मुद्रा साध रहे गट भीतर फिर उल्टे मुंह लटके, माँ के पेट में फिर गर्भ में उल्टे लटके औंधे मुंह लटके, पांच शब्द पांच है मुद्रा लोक दीप यम जाला, इस काल के एक ही ब्रह्मांड का काल का जाल है। और कहे कबीर अक्षर से आगे नी अक्षर उजियाला, अक्षर माने परब्रह्म और नी अक्षर ये पूर्ण ब्रह्म का वास्तविक स्थान, वहाँ इस ब्रह्म से भी आगे। अब आप देखिएगा ये चित्र पहले ब्रह्मांड का देखो, इससे बात आपके समझ में आएगी। ये एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, ये एक अंड है, ये सारा अंडे एलिप्टिकल टाइप में है सारा ब्रह्म। ऐसे ये लोक इनके हरेक के एलिप्टिकल टाइप में है, ये पृथ्वी भी पूरी राउंड नहीं है, वैसे गोल दिखा जरूर देते हैं। अब यहाँ है ये सारा खेल है, ये नीचे के सात लोक, ये पताल लोक, ये तलातल मतातल आदि रसातल, ये सारे ये फिर पृथ्वी लोक है, ये है ये वो मंडल है, ये स्वर्ग और नरक ये साथ ही साथ है, इंद्र के लोक में और फिर ये शिव लोक दूसरा मंडल, और तीसरा ये ब्रह्मा का लोक, चौथा ये विष्णु का लोक और पांचवा ये काल का। ये और गुफा हर एक चीज बनी हुई है, इंट्रेंस प्लेस है ये, यहाँ एक महास्वर्ग बना इस ब्रह्म लोक में, इसको ये सतलोक कहते हैं। और महाविष्णु का केवल यहाँ प्रकाश दिखाई देता है, उस ब्रह्म यहाँ नहीं आते, ये काल ये यहाँ रहता है इस ब्रह्म लोक में, इसको सतलोक बना रखा यहाँ पर नकली। और इसमें ही नकली सतलोक अलखलोक अनामी लोक भी बनाए हुए हैं, इसमें चार स्थिति बना रखी है काल ने, उसी सच्चे उस सतलोक की ही नकल बनाई हुई है यहाँ पे, और ऐसे ही ब्रह्मंडों के बाहर भी बना रखा है। अब ये एक ब्रह्मंड में ही ये पांचों नामों वाले चक्कर काटते रहते हैं, ये बाहर नहीं जाते, ये फिर देखिए इस पूर्ण ब्रह्मंड का, एक ब्रह्मंड के अंदर ये काल का जाल आपके ऐसे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। ये एक ब्रह्मंड है, और फिर बताया है कि ये पांच नाम पांच है मुद्रा, पांच शब्द पांच है मुद्रा, लोक द्वीप यम जाला, ये एक ही ब्रह्मंड में काल का जाल है, यम जाल काल का जाल। और कहे कबीर अक्षर से आगे नी अक्षर उजियाला, ओए होए कहाँ जाना हमने जय बंदी छोड़ की। कहे कबीर अक्षर से भी आगे, अक्षर पुरुष जैसे गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 में लिखा है कि दो भगवान क्षर पुरुष, क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म काल है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, जो 1,00,000 जीवों के आहार करते हैं, और अक्षर पुरुष वो पर ब्रह्म है। कहते इस अक्षर पुरुष से भी आगे अपने पूर्ण ब्रह्म, जो उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो दूसरा ही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो तो आगे है। नी अक्षर उजियाला वास्तव में प्रकाश उस परमेश्वर का अलग है, उसका नूर है और वो आकार में है, कबीर है। अब देखिएगा ये 21 ब्रह्मंड का चित्र ये आपको क्लियर करेगा, स्पष्ट करेगा। ये है ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मंड का लघु चित्र। ये पूरे जो एलिप्टिकल स्लेप से बनी हुई काल ने ये जाल फैला रखा ब्रह्म ने, इसमें इसके 21 ब्रह्मंड हैं। इस काल ने चार महाब्रह्मंड बना रखे हैं, एक महाब्रह्मंड में पांच ब्रह्मंड जो अभी आपको चित्र दिखा था जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश प्रभु हैं, विभागीय मंत्री हैं। ये पांच ब्रह्मंड का एक ग्रुप बना के और एक महाब्रह्मंड का शेप दे रखा, ये भी ऐसे रोक रखे अंडाकार में। तो ये यहाँ इस एक ही ब्रह्मंड में चक्कर लगाते रहते हैं इन पांच नामों वाले, और एक उन तीन जो वास्तविक मंत्रों से छोड़ के अन्य, और वो भी पूरे अधिकारी से नहीं मिलते तब तक। अब ये देखना, इसके बाहर भी काल ने एक जाल फैला रखा है, ये 20 ब्रह्मंड हो गए और 21 में महाब्रह्मंड को ये 21वां एक महाब्रह्मंड को स्वयं ही इसने अपना एक ब्रह्मंड रूप में रखा है। और यहाँ पर ये नकली लोक फिर बना रखा, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली ही, यानी कॉपी की हुई है ऊपर के लोकों की, सतलोक वाले जो ऊपर के हैं। अब काल कहता है ना कि मेरे को प्राप्त हंस, उनका फिर जन्म नहीं होता, उनको यहाँ पटक दे ठाक है कुछ दिन के लिए। लोमस ऋषि जैसे, मार्कंडेय ऋषि जैसे महापुरुषों ने को यहाँ रख देता है, उसके बाद यहाँ पर काफी वर्षों तक, काफी कई लाखों युगों तक ये यहाँ पर मौज मारते, केवल इस नीचे वाले नकली स्वर्ग में सतलोक बनाकर दर दिया। और फिर यहाँ 12 उन्हीं ऐसी पुण्यात्माओं में से 12 अपने सिलेक्ट कर देता है दूत, जिनकी पिछली कमाई अच्छी होती है, शब्द में थोड़ी बहुत शक्ति होती है, उनसे कुछ थोड़े बहुत लाभ उनके अनुयायियों को अपनी कमाई, उनकी कमाई से उनकी घटती रहती है और उनको छोटे मोटी राहत मिल जाती है। और फिर उनको यहाँ से नीचे भेजता है गलत मार्ग दर्शन करने के लिए, ये 12 गुरु यहाँ बनाकर भेजता है नीचे के ब्रह्मंडों में। और फिर इन 12 गुरुओं को भी सजा मिलती है, ये ऐसा जाल फैला रखा काल। और ये तपतशिला है काल की, जहाँ पर ये भून कर खाता है, यहाँ कोई नहीं जा सकता, यहाँ लॉक रखा है इसने बिल्कुल परमानेंट। इसको तो कबीर साहब का वो सच्चा नाम और साथ में सार नाम खोलेगा। अब आपको दिखाएंगे, ये पूरा देख लो फिर एक बार। अक्षर और नी अक्षर यानी पूर्ण परमात्मा के लोक, अब ये देखो संपूर्ण रहस्य जो कबीर परमात्मा ने और साथ में सभी वेदों में यही प्रमाण मिला और उनके आंखों देखे संतों ने, गरीबदास जी ने, धर्मदास जी ने यही बताया और इस दास ने भी उनकी कृपा से ये उपलब्धि हुई। यहाँ देखो ये है वो 21 ब्रह्मंड काल के और एक है ये महाब्रह्मंड, ये टिकारी सी दिख है, इसमें 5 है वो ब्रह्मंड जिसमें वो 5 मंडल बना रखे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रभु बना रखा है। अब ये है काल का पूरा जाल, आप देख रहे हो ये नकली लोक, ये 12 अचिन भक्तों का लोक और ये, अब ये अक्षर पुरुष, ये अक्षर से आगे नी अक्षर उजियाला, ये आप देखो ये तो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल के 21 ब्रह्मंड काल अर्थात काल का लोक, ये फिर कुल मिलाकर भी सारा लोक ही कहलाता है, काल का लोक है सारा। और ये है पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मंड, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मंड, ये केवल गिनती के हैं, ये देखना ये अक्षर पुरुष, ये पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मंड है, ये जो ऐसे गोल में ये दिखाई दे रहे हैं आपको ये वाले, और ये इससे बाहर है ये पूर्ण परमात्मा सत पुरुष कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मंड, ये छोटी छोटी टिकी दिखे ये ब्रह्मंड है, इनकी गिनती को ना, अब इनको इन इसकी और इसकी तुलना में ये कितना है ये हिसाब लगाना, ये है वो वास्तविक स्थान सतलोक जो कबीर परमात्मा का निज स्थान है। और साथ में ऊपर भी यही परमात्मा कबीर साहब ही अपने अन्य रैंक पोस्टों पर यही स्वयं ही रहते हैं, जैसे इसमें सतपुरुष सतलोक में, उसमें अगम लोक में अगम पुरुष इन्हीं को कहते हैं और अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष, अनामी में यही अनामी पुरुष नाम से कबीर परमात्मा ही विद्यमान है। ये फिर देखिए पूरा पूरा का पूरा चित्र, अब ये देख लेना भक्तात्माओं आपके सामने सच्चाई है। अब फिर देखिएगा संत मत प्रकाशन, संत मत प्रकाशन प्रकाश महाराज सावन सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये प्रथम भाग है के भी एमएलएसएल सोडी ही वही सेक्रेटरी हैं जो प्रकाशक है एस एल सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह जिला पंजाब अमृतसर, जिला अमृतसर पंजाब। इसमें सावन सिंह जी महाराज ने, ये सावन सिंह जी महाराज का चित्र है, इनका इनकी टिप्पणी, इनका सर्वार्थ वचन है जो इन्होंने अपनी व्याख्या की है। फिर ये श्री श्रावण सिंह जी महाराज परम श्रद्धा योग्य आदरणीय श्री श्रावण सिंह जी महाराज, इनका इन्होंने एक शब्द को खोला है, कबीर साहब का शब्द है, कबीर वाणी श्री कबीर साहिब, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इसमें से ये पांच नाम निकालने की चेष्टा की है। इसमें देखिएगा, ये सारा वर्णन दिया है कि नीचे गणेश जी का है, इसका किलियम जाप है, कबीर साहब भी बताते हैं इसका किलियम जाप है, ये किलियम है, किलियम नहीं है। और फिर स्वाद चक्र है, ब्रह्म सावित्री का रूप निहारा, उल्ट नागनी का सिर मारा, तहां शब्द ओंकारा है। ये ओंकार शब्द तो ब्रह्मा जी का नाभि कमल में है, ये ओंकार शब्द यहां से ले लिया। आगे देखिए, फिर है नाभि कमल सटदल साजा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। ये ऐसे फिर है सोहम शब्द, यहाँ दस द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, और सोहम शब्द का धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। ये सोहम शब्द शिव के लोक का है, ये स्पष्ट लिखा है, द्वादश कमल हृदय के माही, तहां जंग गौर, ये सावित्री और शिव और भगवान पार्वती ही रहते हैं, ये वहां तक का है सोहम शब्द, ये आपके सामने है। सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करें जय जयकारा है, ये यहीं तक उलझा रहे हैं सभी नामों से। ये सोडस कमल कंठ के माही, तेहिस मध्य बसे अविद्या बाई, और हरि हर ब्रह्मा चवर ढुराई, तहां श्रीयम नाम उचारा है। इस शक्ति का नाम ये है वास्तव में, या इन्होंने सतनाम मिला लिया, श्रीयम की जगह सतनाम लिख लिया। अब ये देखो, ये काल तक के ही है सारे नाम, और यही तीनों नीचे ही तक के कमलों के। फिर है कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये एक शरीर केंद्र है। सतशंकर सतगुर सिरधारा, वहाँ वहाँ सतनाम उचारा है, इनसे ऊपर एक सच्चे नाम का जाप करना पड़ेगा। ये तो करने ही, जो हम प्रथम बार आपको देते हैं ये मंत्र हैं वो करने के, जो पार्वती और शिव को शिव ने दिए थे। आगे चलिए, ये डाकनी शाकनी सब कलकार है, सतनाम सुन बाजे सारे। ये देखो, डाकनी शाकनी बहु कलकार है, जम किंकर धर्म दूत अहंकार है, सतनाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुर नाम उचारा है। अब कबीर साहब बता रहे हैं कि ऐसा इस काल ने मेरी ही ऊपर की नकल यहाँ पर नकली बना रखी है। नीचे जो आखिरी यहाँ लाइन है, देखिएगा कि सारे कमलों को बता बतू का कबीर साहब क्या कहते हैं, ये ऊपर लिखा है ना, हरेक ब्रह्मांड में हरेक लोक में एक भावर गुफा बनी हुई है। सैस अठासी दीप बनाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत सदा अखंड सदाए, तह सोहम शब्द झनकारा है। अब हरेक भावर गुफा में जिसके भी लोक को आज जाओगे, वहां पर ये सोहम सोहम ऐसा अपने आप ही आवाज आती रहेगी। लेकिन वो जाप कहाँ ले जाएगा, ये केवल शिव लोक तक आपको दिखाया था पीछे। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई, अय है। अब इसको ये सतलोक, कई तो विष्णु लोक को सतलोक मान लेते हैं। अब यहाँ सतगुरु बता रहे हैं अपनी, लेकिन इन्होंने कहाँ बना दी वो आप देखिए। उठत सुगंध महाधिकाई, जाका वार ने पारा है, सोडस बानो हंस का रूपा, बिना सत धोन बजे अनुपा, ये सतलोक की बताती हुई फिर बताएंगे कि ये काल का जाल इस माया के द्वारा यही उलझा दिया। अब क्या बताया कि हंसा करत समर शर भूपा, सत पुरुष दरबारा है, ये सत पुरुष दरबारा, सतलोक की हद पहुंच गए, वहाँ सत पुरुष है। फिर है उसके करोड़ सूर्य, कोटिन भानो उदय जो हुई, ऐते ही पुनचंद्र खलोई, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की सतलोक में शरीर की व्यवस्था, आकार रूप में मनुष्य है, पुरुष है तो भगवान है, पुरुष है मनुष्य है रूप में, वो सतपुरुष सच्चा भगवान सच्चा मालिक उसका दरबार है। और उसके सतलोक में उसी की महिमा करोड़ सूर्य और करोड़ चांद मिला दे, ऐसी उनकी एक रूम की शोभा है। पुरुष रोम सब एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा सतपुरुष परमात्मा का दर्शन है, दीदार है ना। और ये राधा स्वामी वाले कहते हैं वो तो निराकार है, और कबीर साहब कहते हैं ऐसा दर्शन है उस मालिक का, दर्शन वहां दिखाई देगा, उसके एक रूम में इतनी चमक है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष तहां ठुकराई, अरबन सूर रोम सब नाही, ऐसा अलख निहारा है, उसके एक रोमकूप, यानी शरीर है तो रोमकूप है अन्यथा नहीं है, तो उसका ऐसा वो अलख पुरुष देखा है, उस कबीर परमात्मा की अलख लोक में ऐसी शोभा है। अरबन रोम सोम आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तां ठुकराई, अरबन रोम सब नाही, ऐसा अलख निहार। फिर ता आगे अगम महलिक साजा, अगम लोक है, अगम पुरुष ताही को राजा, खरब खरब सूर्य रोम एक लाजा, एक रोम कूप की इतनी शोभा है कि खरबन ये खरब रोम सूरज भी फीकी पड़ जावे। ताके अकै लोक है भाई, उस ताके अकै लोक है, पुरुष अनामी तहां रहाई, तहां पहुंचे जाने का वाही, कैन सुनन से न्यारा है। अब यहाँ देखो, काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मझारा, पिंड और अंड और शरीर ये एक ही है, एक अंड के अंदर है ये नकली जो मैं बता रहा हूँ, यो है तो वास्तव में सतलोक में, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये ऐसा ही सकाल ने यहाँ नकली भी बना रखा है अपनी माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, इस शरीर में पिंड और अंड ये एक ही शरीर को कहा, ब्रह्मांड को। माया अविगत जाल पसाया, इस माया ने ऐसा खतरनाक अविगत जिसकी कोई नहीं जान सकता, जो सो कारीगर भारा है, आदि माया इस प्रकृति ने की नहीं चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड रचाई, जो मैंने वास्तविकता बताई है ऐसी ही इस माया ने काल की के दबाव से यहाँ एक झूठी रचना रच रखी है, वही सतलोक अलखोक अनामीलोक की। और ताका प्रतिबिंब डारा है, उसका ही जो का जो एक कॉपी की है, प्रतिबिंब वास्तविकता नहीं, जैसे शीशे में कोई चीज देखा है और वह वास्तविक थोड़ी होती है, दूर से राजा का महल दिखा दे और दर्पण में, वो तो प्रतिबिंब है वास्तविकता नहीं है, ऐसा ही इसने नकली जाल यहाँ फैला रखा है। इसमें ये नकली नाम जपने वाले हंस और संत भक्त यहाँ तक उलझे रहेंगे, और जो बीड़ी शराब मास्टमा को पीते हैं वो तो कहीं भी किए भी कोई ना। शब्द विहंगम चाल हमारी, अरे क्या बताते हैं कि हम तो उसे आगे जाएंगे, शब्द विहंगम है, कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, उस सार नाम को लेकर और शब्द सार शब्द को प्राप्त करके हम तो पक्षी की तरह उड़ जाएंगे, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। ओए होए, कहते हैं ये सतगुरु, क्योंकि कबीर परमात्मा अपना ही भेद स्वयं ही हंस बनकर दे रहे हैं कि वो पूर्ण संत ही ये रास्ता देगा आपको, देई तारी यानी ये लौ लगा दी हमारी, ये रास्ता बता दिया, खुले कपाट शब्द झनकारी। अब सतलोक में जाकर वो वास्तविक ऊपर जाकर के उस तीन नाम के मंत्र ओम और बाद में दो नाम और मिलेंगे, उसके बाद फिर वहां जाने के बाद वो वास्तविक धुन आपको सुनेगी, जब तक कि शरीर में जो कुछ सुन रहा है ये काल की धुने हैं। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, ओए ओए। इस अंड और पिंड तय, अब इस काल के लोकों से, क्योंकि एक अंड में भी यही रचना है और पूरे काल ने अपने 21 ब्रह्मांड को भी एक अंड रूप में ही रोका हुआ जैसा आपने देखा, इस अंड और पिंड से पार सो देश हमारा है, वो सतलोक तो इनसे आगे है और वो तीन मंत्र के जाप से जाएगा। ये सतलोक का और सब कुछ जानकारी कबीर साहब के ही शास्त्र से इन संतों को ही है, इनका अपना कोई उससे पहले ज्ञान नहीं है। अब देखिएगा, ये वही संत मत प्रकाशन महाराज सावन सिंह जी द्वारा राधा स्वामी सत्संग व्यास ये प्रथम भाग है, इसी का सुना रहा था मैं। पहले तो कबीर साहब का केवल वाणी सुना रहा, अब इनके द्वारा सरलार देखो। ये स्वयं कह रहे हैं कि आदि माया कीनी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई अवगत रचना रची अंडमाही अवगत अविगत रचना रची अंडमाही। ये उस अविगत पूर्ण परमात्मा की जिसको कोई नहीं जान सकता इसने झूठी रच दी यहाँ पर, ताका प्रतिबिंब डारा है झूठी बाजी पिंड दिखाई है। सारी की सारी जो बताकर बताया मालिक, इन्होंने क्या किया, काल ने ब्रह्मांड के छह चक्रों का प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों का में डाला है। बता, काल ने ब्रह्मांड के छह चक्रों का प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों में डाला। इन्हें न्योना वीरा ब्रह्मांड कौन सा है, अंड कौन सा है, वही अंड वही ब्रह्मांड वही पिंड। ये देखियो, काल ब्रह्मांड ने ब्रह्मांड के छह चक्रों का प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों पर डाला है, अंड और पिंड ब्रह्मांड के रह गया। वही अब आपको देखा था एक ही ब्रह्मांड, उसको अंड भी कहते हैं, उसको पिंड भी कहते हैं। डाला यानी गोलमोल करने की चेष्टा कर रहे हैं। माया ने अंड के छह चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के छह चक्रों पर डाला है। ये क्या हुआ, काल के ब्रह्मांड के ने छह चक्रों का प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों पर डाला है और माया ने अंड के छह चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के छह चक्रों पर डाला है। बोलो, अब ना अंड का ज्ञान ना पिंड का, एक ही वस्तु है अंड भी पिंड भी ब्रह्मांड भी, ये अलग नहीं है। ध्यान दो, अब ये कह रहे हैं कि पहले काल के ने ब्रह्मांड के छह चक्रों का प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों पर डाला है और माया ने अंड के छह चक्रों का प्रतिबिंब पिंड के छह चक्रों पर डाला है। इन्होंने यही नहीं मालूम अंड कौन सा है, पिंड एक ही चीज है, उनके नरे नरे बना रहा। मतलब यह है कि कोई जीव यहाँ से निकलकर सतलोक न चला जाए, जितने प्राणायाम करने वाले योगी हैं सब अंड में रह गए और कोई योगी योगेश्वर ब्रह्मांड में रह गए, तो जो संतों के साथ गया वह सचखंड सचखंड पहुंच गया, बाकी नीचे रह गए। देह के जो छह चक्र हैं अहले इलाम मुसलमान इन्हें सत लताइफे सता कहते हैं, ये आंखों के नीचे हैं। संसार का अनगिनत भाग इनमें रह गया, अनेक संप्रदाय आंखों के नीचे ही बैठे हैं। बताओ, अब फिर देख लो दोबारा पूरा दिखा, देखो के छह चक्रों के, काल ने ब्रह्मांड के छह चक्रों का प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों पर डाला है और माया ने अंड के छह चक्रों का, ये पिंड और अंड एक ही है दो नहीं है, और ये ब्रह्मांड भी उसी को कहते हैं। अब एक ही को तीन चार बनाकर गोलमोल कर दिया। आगे देखो, शब्द विहंगम चाल हमारी कहे कबीर सतगुर दीतारी और खुले कपाट सबल धनकारी, पेंड और अंड के पार सो देश हमारा है। इसको पेंड कहो तो भावे अंड कहो, कहते हैं इस पेंड और अंड के पार सो देश हमारा। अंड और पेंड और ब्रह्मंड इसी को कहा है कि इस शरीर में जो व्यवस्था तुम देख रहे हो इससे बाहर हमारा लोक है सतलोक में। बस कह कभी सतगुर दी तारी, इसके पार हमारा वास्तविक स्थान है। अब ये अधूरे से ज्ञान ये सिद्ध करते हैं कि इन संतों ने कोशिश तो की है अपने भक्तों को सतमार्ग बताने की, पर स्वयं ही अधूरा ज्ञान था, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बिना, उनकी रजा के बिना और उनकी हर बात को सत माने बिना, उनके जितने भी लिखे हुए लेख वाणी है उनके कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर साहब की शब्दावली में और फिर गुरु नानक देव जी के ग्रंथ साहिब में, गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी पूरे ग्रंथ साहिब में, ये सभी एक ही मार्ग बताते हैं। उसी में सिमरण विधि भी है, पूर्ण ज्ञान भी है। अब ये फिर देखिएगा ब्रह्मांड का चित्र, जैसा कि अभी आपने राधा स्वामी की पुस्तक में देखा कि उन्होंने पिंड, अंड और ब्रह्मंड को तीन भाग बना दिए। काल ने तो ब्रह्मंड में छह चक्र बना दिए, माया ने फिर पिंड में, अंड में, ये एक ही है अंड और पिंड, इसलिए उसको अंड पिंड से पार्श्व देश हमारा, अंड भी वही है पिंड, अंड भी वही है और ब्रह्मंड भी वही है। ये देखिएगा एक ब्रह्मंड का चित्र, ये सामने चित्र है एक ब्रह्मंड ब्रैकेट में अंड, ब्रह्मंड और अंड एक ही है। ये काल ने हर एक ब्रह्मंड कहो चाहे इसे अंड कहो, पिंड इसलिए कहते कहा जाता है, एक ब्रह्मंड उसको अंड भी कहा है और इस ब्रह्मंड का ही ये एक चित्र इसके अंदर बना हुआ है शरीर में, इसमें सभी कमलों का और सहस्रार कमल तक का विवरण है, ब्रह्मलोक तक क्या की ही व्याख्या है इसमें, इसलिए इसको पिंड भी कहा है। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा, इसको अंड कहो चाहे ब्रह्मंड कहो चाहे पिंड कहो, इससे पार यानी काल के सभी लोकों से आगे जाके वहां हमारा वास्तविक स्थान है। और जिन संतों ने अभी तक ये नहीं बताया, सृष्टि रचना भी नहीं बताया, सृष्टि रचना बताते तो पता लगता कि कबीर परमेश्वर है, और इन संतों ने आंखों देखा होता तो गुरु नानक देव की तरह कहते कि वो कबीर परमात्मा है जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे। अब ये अनजान व्यक्ति ये कहते हैं कि वो तो कबीर साहब तो कल उत्पन्न हुए और वेद तो आदि अनादि है। इस कबीर परमेश्वर का वास्तविक नाम कबीर है और ये वेदों से पहले सतलोक में हम भी थे, कबीर साहब भी थे, इन्होंने हमारे सब की उत्पत्ति की, सब ब्रह्मंड रचे थे, इसलिए वेदों में उसी काशी में आए हुए कबीर परमेश्वर का नाम विद्यमान है। परिभाषा प्रभु की आस्था चैनल पर देखकर और सुनकर इन पुण्य आत्माओं में उथल पुथल होगी। बहुत सी भक्तात्माएं हर संत से उपदेशी अपने शंका समाधान के लिए इस दास से टेलीफोन पे या पत्र व्यवहार के द्वारा या स्वयं व्यक्तिगत रूप पर से आकर के भी संपर्क कर रही हैं। ऐसे ही एक भक्त आत्मा जिसने श्री सुधांशु जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त है वो आकर के मिले, वैसे तो पहले काफी आ चुके हैं सैकड़ों की संख्या में जो उन महापुरुष से उपदेशी हैं और पता था हमें कि वो क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो भक्तात्मा अब बाद में हमें मिले उन्होंने इस दास को उनके द्वारा एक रचित एक पुस्तक दिखाया, ये देखिएगा, ये परम आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज, इस पुस्तक का नाम है स्वर्ग की लहरें। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, सबसे पहले इस दास ने इनके पीछे जीवनी देखी थोड़ी सी, इसमें लिखा है देखो ध्यान से, दिव्य शक्ति हैं सुधांशु जी महाराज, संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के विपुल ज्ञान को जन जन के अंतर में ज्योत रूप के प्रतिस्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज, तप और अब देखो तप त्याग ज्ञान साधना के प्रतिनिधि बनकर अवतरित हुए हैं। ये ध्यान रखना तप त्याग। अब इस पुणात्मा ने आगे देखो, यहाँ नीचे दिखाते हैं, ज्यादा समय नहीं, यहाँ से देखिएगा, 7 वर्ष की अल्पायु में प्रभात में भजन गान गीत संगीत सवर लहरियों में आनंदित रहना, मुखमंडल पर मुद्रिता सौम्यता आदि अपने आप ही, क्योंकि बचपन से ही प्रभु की तरफ आकर्षित थे, क्योंकि ये पिछली पुण्य आत्मा थी, पिछले जन्मों के अच्छे शुभ कर्म शास्त्र अनुकूल किए हुए थे। अब 10 वर्ष की आयु में, ये देखो 10 वर्ष की आयु में ये पुण्य आत्मा प्रभु की तलाश में भटकती भटकती कहाँ पहुंची, हट योगी विजेंद्र मुनि का साथ हुआ। प्रभु की तलाश होती है, हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ, हठ योगी, हठ योगी जरूर ध्यान से पढ़ लो। 10 वर्ष की आयु में हठ योगी विजेंद्र मुनि का साथ ध्यान साधना की कठिन प्रक्रिया, कठिन यानी घोर, घबराए नहीं, बाल यशपाल साधना पथ के अडिग पथिक बनकर अंतर शक्तियों के को जागृत किया, गुरुकुल पद से शिक्षा प्राप्त की, 2 विषयों में एमए किया, आगे देखो 2 किया, 20-21 वर्ष में हरिद्वार में दर्शनार्थ नंद किशोर जी के साथ, अब देखो कितने गुरु बन गए इनके, पहला तो हठ योगी विजेंद्र मुनि जी, और फिर दूसरे के पास गए तो नंद किशोर जी, और फिर तीसरे बनखंडी साधु, और चौथे प्रकाशानंद जी से ज्ञान ध्यान सीखने का सु अवसर मिला। अब देखिएगा, 4 गुरुदेव तो पहले हो चुके हैं, जिनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जैसा भी जिसके पास मिला। आगे आपके जीवन में स्वर्णमय मोड़, नई चेतना का जागरण, अंतर शक्तियों का उद्बोधन, आपके उत्तर काशी में हिमालय के साधना में, हिमालय की साधना में योगी सदानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये पांचवें मार्गदर्शक। आगे देखिए, आशीष मिला उनका अपने स्वरूप को, उन्होंने अपने स्वरूप को पहचानो, दिव्य तेज को अनुभूति हुई, फिर परमानंद का गुंजन हुआ, साधना विश्व को धरती प्यासी जैसा भी। आगे देखो, स्वामी मुक्तानंद जी के सानिध्य में 24 मई 1991 को रामनवमी के पावन विश्व जागृति मिशन की स्थापना की। अब आगे ये काफी वर्ग, गौशालाएं, दिव्य मंदिर, सामूहिक प्रार्थना स्थल, सिद्धेश्वर स्थान, गुरुकुल ये आदि, यानी वर्ध आश्रम आदि बहुत कुछ बनवा दिए इन्होंने 5 वर्ष में। अब देखिएगा पुण्य आत्माओं, ये प्यारी आत्मा प्रभु की तलाश में श्री सुधांशु जी महाराज बचपन से ही घूम रहे थे। ये पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों की शास्त्र अनुकूल की गई साधना के आधार पर ये पिछली भक्ति कमाई से ये प्राणी तड़पता रहता है प्रभु की तलाश में, और फिर उसकी टोह के लिए जगह जगह जाता है। और जैसा कि 7 वर्ष की अल्पायु में अपने आप भक्तों गीत गाना, औरों को भी समझाना, ये पिछले जन्म के योगी थे, उसमें इन्होंने कोई शास्त्र अनुकूल साधना की हुई है, जन्म मरण मिटाने, क्योंकि इन्होंने साधना ही केवल ब्रह्म तक की है, जो 4 अध्याय का 5 श्लोक में स्वयं काल भगवान ब्रह्म कह रहा है कृष्ण जी में प्रवेश करके, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो रही है, अर्थात जन्म मरण न तो काल का मिटा है और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश का मिट सकता है, और इनके उपासकों का फिर कहां खत्म हो सके है, इसलिए ये जन्म चल रहा है, बचपन से ही तड़प है उस प्रभु की। रास्ता ठीक ना मिलने से ना जाने कितने संत ढूंढे, अगर सही संत मिल जाएगा दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। अब जैसे एक कुएं पर गए पानी नहीं मिला, दूसरे पर गए वहां भी नहीं मिला, तीसरे पर गए वहां भी नहीं मिला, तो फिर प्यासे ही रहे। अगर पानी मिल जाएगा दूसरे पर जाने की आवश्यकता ही नहीं मिलेगी पड़ेगी आपको। अब इस प्यारी आत्मा प्रभु की तड़फ के अंदर घूम रही प्यारी आत्मा के अंदर सुधांशु जी के अंदर जिसने जो भी ज्ञान था वो ये ठोक दिया और ये स्वयं ही अनभिज्ञ थे। जैसे मार्गदर्शक मिलते गए, उनको संग्रह करते गए, उनसे जो सुना, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, किसी ने तप करवाया, किसी ने कुछ करवाया, तो फिर इन्होंने वो अटकलें आ गई बोलने और चलने बोलने की, क्योंकि डबल एम ए ये तो प्रवचन की शैली बोलने का तरीका, जैसे कोई हीरो एक्टर अपनी कला पर प्रभावित करके करोड़ों की संख्या में बच्चों को प्रभावित कर लेता है, व्यक्तियों को, ऐसे ही इन संतों के अंदर बोलने की शैली बन गई और ज्ञान खचड़ा हो गया। अब देखिएगा, जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा उस भगत के द्वारा दी गई और इसमें मिला कि ये डबल एम ए है, तो मैंने सोचा अवश्य और गुरुकुल में पढ़े हुए हैं तीन महापुरुष की अनुभूति बहुत अच्छी होगी। दास ये तलाश कर रहा है अभी भी कि कोई बात नहीं, अगर इनके पास ये कोई अच्छी वस्तु मिल जाती तो बड़ा खुश होता और कहता कि देखो इस महापुरुष ने बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन जिस भी संत के अपने अनुभव और जैसा उनके अंदर सारे जीवन का भरा हुआ ज्ञान है वो सब बेसलेस, शास्त्र विरुद्ध, एक भी शास्त्र के अनुकूल कथन नहीं मिलता। अब फिर क्या देखा, अब ये क्या बताते हैं, ये देखियो, इन्हीं की फिर मैंने कई पुस्तकें मंगवाई, सुधांशु जी के आश्रम बकरवारा नांगलोई दिल्ली से ढेर सारी। अब उनमें देखा तो पाया क्या, ये आप देखिएगा, वेद सरिता, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज, और इन्होंने क्या लिखा है अपनी इसमें टिप्पणी में कि शिवजी ही, ये शिव भगवान की मूर्ति देखो ऊपर, इनको इन्होंने मृत्युंजय का अर्थ होता है जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, जिनकी कभी मृत्यु ना हो, अर्थात अविनाशी। ये देखो नीचे क्या टिप्पणी दी है, भगवान शंकर मंगलदाता कल्याण प्रद सौभाग्य को देने वाले हैं, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर ने अपने माथे पर चंद्र को धारण किया है, प्रतीक है शीतलता का, जीवन में आगे बढ़ने की आप के लिए आवश्यक है कि माथे पर शीतलता रहे। लेकिन भगवान शंकर ने गले में सर्प की माला डाली है, गले में सर्प उनका आभूषण है, यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन में वे लोग भी हैं जो विषैले लोग हैं, विषैले। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो संसार को बाधा बांध सकता है, प्रेम का व्यवहार अगर संसार में किया जाए तो विषैले लोग भी आपके गले का आभूषण बन सकते हैं। भगवान शंकर का एक रूप और भी है, जब उन्हें महादेव कहा गया समुद्र मंथन के अवसर पर, उन्होंने अमृत पिया वे सबके देव कहा, जिन्होंने अमृत पिया वे सब देव कहा, सबके देव कहलाए। और लेकिन भगवान शंकर ने विष पिया इसलिए वे देव नहीं महादेव कहलाए, ये महादेव की परिभाषा बना दी। यहाँ देखो, श्रद्धा भाव से हमेशा उनका नाम उच्चारण कीजिए, किसका, भगवान शंकर का। उस मंगलमय प्रभु को याद करते हुए सदा उसके हमेशा उनका नाम उच्चारण कीजिए। और नीचे नारा क्या दिया है, ओम शांति 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 ओम। तो यहाँ या तो ये लिख देते ओम नमः शिवाय, नाम तो कह रहे हैं कि भगवान शिव का लेना चाहिए और अपना दूसरा मंत्र अपना जो भक्तों को प्रदान किया जाता है वो भी ओम शांति ये लिख दिया। अब ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इनको कहते हैं इन्हीं की वाणी में ऊपर चित्र देखो पूरा शिव ही मृत्युंजय है। ये श्री सुधांशु जी महाराज का चित्र है और ये कह रहे हैं कि शिव ही मृत्युंजय है। मृत्युंजय का अर्थ होता जैसे मृत्यु को जीतने वाले अर्थात अजरो अमर, ये शिव जी को अविनाशी बता रहे हैं और ये स्वयं कह रहे हैं कि हम तो नाशवान हैं, हम तो कई कई बार मर लिए, हम तो नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं। अब दास आपको फिर बताएगा और शास्त्रों में प्रमाण दिया जाएगा कि शिव जो है जिनके उपासक श्री सुधांशु जी हैं और उनको वो अजर अमर मान रहे हैं, वो स्वयं कहते हैं हम तो नाशवान हैं। उससे पहले आपको सृष्टि रचना का थोड़ा सा ज्ञान फिर कराना पड़ेगा। जैसे आपने सृष्टि रचना में सुना कि पहले केवल सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहेब अनामी लोक में रहते थे और हम सभी आत्माएं उनमें समावेश थी। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने तीन लोक और रचे नीचे के, जिसमें जो सतलोक अलखलोक और अगम लोक उनका नाम रखा, उनमें भी तीन स्थिति में स्वयं ही रहते हैं। सतलोक में सतपुरुष परम अक्षर पुरुष नी अक्षर पुरुष अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम और वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक परमात्मा, ये उनके उपमात्मक नाम है। सतलोक के अंदर जब इन्होंने सृष्टि रची कबीर परमेश्वर ने, एक शब्द में 16 द्वीप बनाए और फिर 16 शब्दों से 16 सूत यानी पुत्र उत्पन्न किए, उनको एक एक द्वीप प्रदान किया, फिर अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचो। अचिंत ने अपनी सब शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म ये एक अमृत सरोवर में विश्राम करने लगा, निद्रा आ गई काफी समय तक, बहुत लंबे समय तक निद्रा नहीं खुली। तब कबीर परमेश्वर ने, सत पुरुष ने, अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने अपनी शब्द शक्ति से एक अमृत तत्व से अंडा बनाया और उसमें एक जीव आत्मा प्रवेश की, उसको उस अमृत सरोवर में छोड़ा जहां अचिंत सो रहा था। वो अंडा गड़गड़ करता हुआ गया, अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई और जब कोई अधूरी निद्रा से जागता है तो उसकी आंखों में कोप होता है। उस कोप से जब उसने देखा तो किसने, अक्षर पुरुष ने, परब्रह्म ने, वो अंडा फट गया, अंडे में से एक व्यक्ति निकला जवान जिसका नाम ज्योत स्वरूपी निरंजन रखा, उसी को कैल भी कहते हैं। वही क्षर पुरुष भी कहलाया आगे चल के, उसी को क्षर पुरुष भी कहते हैं और यही फिर आगे चल के काल कहलाया और यही काल सभी जीवों को धोखा देकर महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में एक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में 21 अपने 20 ब्रह्मांडों में रहता है। ये आगे आपको प्रमाण भी देंगे। पूर्ण परमात्मा सत कबीर ने, कबीर साहेब ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निद्रा में था और तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो और दोनों ही अक्षर पुरुष ये परब्रह्म तथा क्षर पुरुष ये ब्रह्म अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल। उसमें अचिंत के ही द्वीप में रहने लगे। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अर्थात उस अकाल मूर्त ने सतपुरुष ने कबीर साहिब ने हम सबकी उत्पत्ति सभी आत्माओं की सतलोक में कर दी। हम वहां अपने पिता अपने मूल मालिक कबीर परमेश्वर के चरणों में निश्चिंत रहा करते थे। ना जन्म था ना मृत्यु थी ना कोई काम था ना गर्मी थी ना सर्दी थी। कुछ दिनों के बाद इच्छर पुरुष काल ज्योत स्वरूपी निरंजन के आत्मा में एक अधूरी सोच उठी। उसके मन में उसकी आत्मा में सोच में ये आया क्योंकि हम यहाँ मन ही को सोच बताते हैं इसलिए वहाँ आत्मा की अपनी अपनी सोच होती है मन नहीं होता। लेकिन यहाँ वाले भक्त आत्माओं को समझाने के लिए मन ही शब्द प्रयोग किया जाता है। ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में ये आया कि मेरे अन्य 15-16 भाई तो अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 यानी अचिंत अक्षर पुरुष और ये क्षर पुरुष अर्थात अचिंत परब्रह्म और ब्रह्म ये तीनों अचिंत के ही द्वीप में रह रहे थे। ये सोचकर ज्योत स्वरूपी निरंजन ने या अर्थात क्षर पुरुष ने सत्तर युग तक एक पैर पे खड़ा होके तप किया। जब ये तप कर रहा था ज्योत निरंजन तब हम सभी आत्माएं जो इस काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई हैं, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अपने मूल मालिक पूर्ण ब्रह्म सत पुरुष नी अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म जिसके उपमात्मक नाम है उनसे हृदय हटाकर हम पतिव्रता पद से गिर गए और इस काल में क्षर पुरुष में हमारी आस्था बन गई। वो जानी जान कबीर परमेश्वर ने हमें आकाशवाणी से कहा कि तुम इस नादान की इस हट तपस्या को मत देखो मस्त रहो इस अनमोल आनंद में। हम हृदय से नहीं हट पाए ज्योत निरंजन तक ऊपर से लोग दिखावा सावधान हो गए। ऊपर से हम सावधान हो गए अंदर से फिर भी इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंदर अपनी आसक्तता रखी। जब ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात इस क्षर पुरुष ब्रह्म ने सत्तर युग तप किया तब कबीर परमेश्वर ने पूछा आप क्या चाहते हो। तब ज्योत निरंजन ने कहा कि मैं अपना अलग राज्य चाहता हूँ ये स्थान मुझे कम लग रहा है। सतपुरुष ने उसके इस हट तप के बदले में उसको राज्य दे दिया 21 ब्रह्मांड दे दिए जैसे 21 प्लाट दे देवे कोई साहूकार पिता। उसके बाद जो स्वरूपी निरंजन के मन में आया कि मैं इसमें कुछ सृष्टि रचना करूं ऐसा सोचकर 70 युग तप फिर किया। अब उसके उस 70 युग के तप को देखकर हम और ज्यादा आसक्त हो गए। कबीर परमेश्वर ने पूछा क्या चाहते हो तुम ब्रह्म। तब क्षर पुरुष ने कहा कि मुझे यहाँ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करो। कबीर परमेश्वर ने क्षर पुरुष को ब्रह्म को ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए उसके बाद इस छर पुरुष ने सोचा कि मैं अपनी इस अलग से बनाए हुए 21 ब्रह्मंडों में मुझे जीव भी चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। 64 युग तप फिर किया। जब 64 युग तक तप इसने कर लिया, तब कबीर परमेश्वर ने फिर पूछा कि ज्योत निरंजन तू क्या चाहता है? अब तुझे जो मांगा था मैंने दे दिया। तब इस छर पुरुष ने ज्योत स्वरूपी निरंजन ने कहा कि मुझे जीव दो, आत्मा दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। तब कबीर परमेश्वर ने कहा भाई आत्मा नहीं दे सकता मैं आपको, ये आत्मा तेरे किसी भी तप के बदले में, किसी प्रकार की भी कोई क्रिया साधना के बदले में मैं अपनी प्यारी आत्मा नहीं दे सकता, और तूने जो चाहिए तू ले सकता है। हाँ एक शर्त है, यदि ये सब इच्छा से जाना चाहे तो मैं इनको भेज सकता हूँ। अब अंतर्यामी परमेश्वर ने ये ज्ञान था कि ये दूध फट गया, क्योंकि हम अपने मूल मालिक से हृदय से हट चुके थे और अब ये यहाँ रखने योग्य नहीं। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, ये स्वयं जाना चाहे तो जा सकते हैं। तब ज्योत स्वरूपी निरंजन हमारे पास आया, हमसे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, अलग से ब्रह्मांड बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, वहां पर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया जो है झरने बनाऊंगा, दूधों की नदी बहाऊंगा, बड़े अच्छे अच्छे मेवा होंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही उसके ऊपर आसक्त थे जैसे इन एक्टरों की एक्टिंग पे, ये नादान बच्चे मोहित हो जाते हैं, लड़के और लड़कियां हीरो और हीरोइनों पर इतने आसक्त हो जाते हैं कि जब कभी किसी क्षेत्र में कोई हीरो या हीरोइन आ जावे, लाखों की संख्या में एकत्रित हो जाते हैं उसके दर्शनार्थ, और लेना एक न देने दो। हम ऐसे ही व्यक्ति हमारी वहां से बिगड़ी, हम अपने मूल मालिक ने छोड़ गए और इस छर पुरुष के, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के काल के जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहलाया, इसके ऊपर आसक्त हो गए, अपने मूल भगवान कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से अपनी वृत्ति हटा ली। हम पतिव्रता पद से गिर गए, हम पहले ही तैयार थे। तो हम सभी आत्माओं ने कहा कि यदि पिताजी आदेश देंगे तो हम जाने को तैयार हैं, तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमेश्वर के पास आया, दंडवत प्रणाम किया और कहा पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने के लिए सब इच्छा से तैयार हैं। तब कबीर साहब ने यानी पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि यदि मेरे सामने वो सभी स्वीकृति देंगे तो मैं तेरे साथ उनको भेज दूंगा। कबीर साहब और ज्योत स्वरूपी निरंजन हमारे पास आया। कबीर साहब ने हमसे पूछा कि जो ज्योत स्वरूपी निरंजन के साथ जाना चाहते हैं वो आत्मा अपने हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। तब हम घबरा गए कि हम अपने मुख से कैसे कहें अपने पिता को त्याग कर जाने की। उसमें एक आत्मा ने हिम्मत किया,